आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
नमस्कार, रविवार 16 अगस्त 2026 के मुख्य समाचारों के साथ मैं हूँ स्वाति शर्मा। न्यू साउथ वेल्स देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जो उस गन बायबैक योजना को लागू करेगा जिसकी घोषणा बॉन्डाई बीच पर पिछले साल दिसंबर में हुए आतंकी हमले के बाद फेडरल सरकार ने की थी। 2 नवंबर से जिन बंदूक लाइसेंस धारकों के पास हथियारों की नई सीमा से ज्यादा बंदूकें हैं वे मुआवजे के बदले अपने हथियार सरकार को सौंप सकेंगे। इस योजना के तहत उन व्यवसायों और उद्योगों को भी वित्तीय सहायता दी जाएगी जिन्हें इन नए नियमों के मुताबिक खुद को ढालना होगा। न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर का कहना है कि इस योजना की सटीक लागत अभी निर्धारित नहीं की गई है लेकिन उन्हें लगता है कि यह सैकड़ों मिलियन डॉलर में होगी। फेडरल सरकार का कहना है कि वह ऑस्ट्रेलिया में वर्किंग हॉलीडे वीजा की प्रोसेसिंग धीमी कर रही है। यह कदम प्रवासन नीति में किए जा रहे कई बदलावों का हिस्सा है जिनका ब्यौरा अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है, पर गृह मामलों के मंत्री टोनी बर्क ने इन बदलावों की पुष्टि कर दी है। इस वीजा के जरिए लोग क्षेत्रीय इलाकों में काम करके ऑस्ट्रेलिया में अपने रहने की अवधि बढ़ा सकते हैं। विक्टोरिया के फिलिप आइलैंड पर लिटिल पेंगुइन प्रजाति के एक पेंगुइन की H5N1 बर्ड फ्लू से मौत हो गई है। यह घटना शनिवार रात हुई। यह द्वीप दुनिया की सबसे बड़ी लिटिल पेंगुइन कॉलोनी का घर है जहां करीब 40,000 पेंगुइन रहते हैं। साथ ही यहां ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी फर सील कॉलोनी भी मौजूद है। यह खबर ऐसे वक्त में आई है जब राज्य सरकार कल से यानी सोमवार से करीब 5,000 लिटिल पेंगुइन्स के साथ साथ मेलबर्न के सेंट किल्डा बीच पर भी टीकाकरण अभियान शुरू करने की तैयारी में है। एलिस स्प्रिंग्स में हुए 44वें नायडॉक अवार्ड्स में युवा मूल निवासी महिलाओं को विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करने वाले एक कार्यक्रम को इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यंग इंडिजिनस वीमेन्स स्टेम एकेडमी एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो एबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर महिलाओं को हाई स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा, टर्शरी पढ़ाई और आखिर में रोजगार तक हर पड़ाव पर सहयोग देता है। इस साल के समारोह में यह अकादमी उन कई संस्थाओं और व्यक्तियों में शामिल रही जिन्हें सम्मानित किया गया। इस आयोजन का मकसद एबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर समुदाय के उन उल्लेखनीय योगदानों को पहचान देना है जो उन्होंने अपने और व्यापक समाज के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किए हैं। इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप के पास आए 7.7 तीव्रता के भीषण भूकंप और उसके बाद आए दर्जनों झटकों में कम से कम 47 लोगों की जान जा चुकी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के मुताबिक शनिवार को आए इस भूकंप में कई लोग घायल भी हुए हैं। भूकंप के केंद्र के सबसे नजदीक स्थित नागेको क्षेत्र के करीब 2,000 निवासियों को निकाला जा चुका है लेकिन अधिकारियों का कहना है कि भारी नुकसान की वजह से बचाव दल कुछ इलाकों तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। और अब रुख करें भारत का, तो महाराष्ट्र के खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य और किराना उद्योग के खिलाफ अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है। कीड़े मकौड़े और कॉकरोच के संक्रमण और गंदगी से जुड़ी अन्य शिकायतों के बाद विभाग ने भारत की बड़ी किराना कंपनियों इटर्नल, स्विगी और जेप्टो के 12 गोदामों के परमिट निलंबित कर दिए हैं। यह ताजा छापेमारी क्विक कॉमर्स यानी मिनटों में किराना सामान पहुंचाने वाले सेक्टर पर केंद्रित रही और यह ऐसे वक्त हुई है जब राज्य के नए खाद्य सुरक्षा प्रमुख 51 वर्षीय तुकाराम मुंडे पहले ही मुंबई के कुछ सबसे लोकप्रिय रेस्टोरेंट्स को साफ सफाई में कमी के चलते बंद करवा चुके हैं। आज के लिए मुख्य समाचारों में बस इतना ही। अन्य खबरों और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए SBS हिंदी के साथ, हमारी वेबसाइट sbs.com.au/hindi या फिर SBS हिंदी के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज के जरिए। धन्यवाद।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।